नमस्कार श्रोताओं, मैं मनोहर लाल कश्यप संवाददाता सर्विक वाणी से आज फिर से आपके बीच उपस्थित होता हूं, दिल्ली एनसीआर बहादुरगढ़ हरियाणा से। मेरे सामने बहादुरगढ़ से CI2 से मुकेश जी हैं। तो मुकेश जी सबसे पहले अपना परिचय देंगे हमारा, और सर्विक वाणी में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
श्रोताओं, मैं मुकेश, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, जिला का ऊपर।
आगे बताइए कि आज आप लोगों ने कुछ धरना प्रदर्शन किया, उसके विषय में अवगत कराइए हमारे श्रोताओं को, क्या किया है
आज हमारा मनरेगा मजदूरों का और भवन निर्माण के मजदूरों की मीटिंग हमने 2-3 गांव से बुलाई थी।
जी,
हमारी योजना ये थी कि आज हम प्रदर्शन करेंगे।
जी जी।
लेकिन कुछ गांव से हथियार नहीं पाए काम के दबाव में, इसलिए हमने मीटिंग करके योजना बनाई है। और दिक्कत ये है कि भवन निर्माण का जो बोर्ड हरियाणा में बना हुआ है
जी,
उसमें लगभग 5,000 करोड़ रुपए है, लेकिन वो पैसे को हरियाणा सरकार जो सुविधाएं देती है
जी,
उस सुविधाओं को बांट नहीं रही है निर्माण के मजदूरों को
जी।
और जब से BJP सरकार आई है उसके बाद से लगभग पंजीकरण रजिस्ट्रेशन होना बंद है, उस बोर्ड और बोर्ड पंजीकरण नहीं कर रहा।
तो मुकेश जी आपकी बात को रोकते हुए कहूंगा, हरियाणा राज्य तो करता है, लेकिन इसको मेन सेंट्रल गवर्नमेंट तो मतलब केंद्र सरकार भी तो करती होगी, इसमें शामिल होगी इस मामले में।
जहाँ तक केंद्र सरकार का बात है, केंद्र सरकार की योजना ये है कि जितने भी बोर्ड अलग अलग स्टेट में बने हुए हैं
जी,
इन तमाम बोर्डों को मिला के एक बोर्ड भारत सरकार बनाना चाहती है, जिसके तहत कार्रवाइयां शुरू भी कर दी है। प्रधानमंत्री श्रम के जो बोर्ड प्रधानमंत्री के जो ये कार्ड बने हुए हैं श्रमिक कार्ड
जी,
ये शुरुआत ही वही है। तमाम जो राज्य के बोर्ड खत्म करके एक बोर्ड के बाकी जितना भी रुपया हर वो रुपया एक जगह इकट्ठे करके शेयर बाजार में अडानी अंबानी को देने की योजना सरकार की है।
ये आप उसी कार्ड की बात कर रहे हैं जिसको ई श्रम कार्ड कहा गया था, जो अभी
हाँ, जिसको ई श्रम कार्ड कहा गया है।
जी जी जी।
ई श्रम कार्ड के तहत ये मतलब मिलना जुलना कुछ नहीं, आज तक भी किसी मजदूर को नहीं मिला उस ई श्रम कार्ड में कुछ भी।
और घोषणा तो सरकार बहुत बड़ी बड़ी करती है कि हर श्रमिक के खाते में इतने पैसे आएंगे उतने में आएंगे, जिसको नहीं मिले वो ये करे, जिसको नहीं मिले वो ये करे, मिले तो किसी को भी नहीं है शायद, मेरा मानना तो ये है।
मतलब हमारे को तो जहाँ तक आप जो कह रही है बात है, हमारे को तो कोई ऐसा मिला नहीं जो ये कह दे हमने ई श्रम कार्ड से इतने पैसे मेरे अकाउंट में आए, आज तक की बात है
जी।
और जहाँ ये बोर्ड को इकट्ठा जो पैसा इकट्ठा करने की योजना है, पैसा इकट्ठा करके इन बोर्डों को और शेयर बाजार में लगाने की मंशा है सरकार की। और ये पैसा असल में ना तो सरकार का पैसा है ये बोर्ड, ये पैसा है जो जी हरियाणा बोर्ड की अगर बात करें और कहीं की भी बात भी कर लो, ऐसे बोर्ड बने हुए हैं उस स्टेटों में भी है ये पैसा, एक भी पैसा सरकार ने नहीं डाल रखा है इसमें। 5 रुपए के हिसाब से श्रमिक के जाते हैं हर महीने
जी,
जो रजिस्ट्रेशन करवा लेता है, बाकी जो 10 लाख से ऊपर जो भी निर्माण देश में होगा उसका 1% उस पैसे उस बोर्ड में जाएगा।
अच्छा मुकेश जी, मैं एक चीज आपकी बात को रोकते हुए, एक चीज आप जब बात करते हैं तो मेरे दिमाग में भी कुछ बातें आती हैं। अब जैसे लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने ई श्रम कार्ड बनवाया, तो जिनका 5 रुपया जो भी कुछ बता रहे हैं वो कटता है, और जिनका नहीं कटता उनको कुछ नहीं मिलेगा क्या? जिनका कटता उन्हीं को मिलेगा कुछ?
नहीं, कटता भी किसी का नहीं है और मिलता भी किसी को नहीं है अभी
जी। अच्छा जी।
हाँ, मतलब ये हम ये कह रहे हम जैसे मैं बनवा लेता हूँ मेरा कटा, नहीं ऐसा नहीं है
जी,
कटा भी किसी का नहीं है और मिला भी किसी को नहीं है अब तक तो, मतलब यहाँ हरियाणा की अगर बात करें
तो। आप इसको क्या कहेंगे कि मतलब ये झूठी योजना है क्या, ये सब धोखाधड़ी है, क्या चीज हो रहा है?
मतलब इस रूप में देख सकते हैं कि ये कार्ड बनवा लो, आधार कार्ड बनवा लो और जी आधार कार्ड को पैन से जोड़ लो
जी।
इस रूप का जो गोरख धंधा चला रखा है सरकार ने लोगों को
जी,
एक आदमी परिवार में तो परमानेंट बैग उठा के CSC सेंटर पे खड़ा ही रहता है।
ये बात आपने लाखों रुपए की कही है, आप बहुत घोषणा कर रखी है कि जो इतनी तारीख तक आधार कार्ड लिंक करा लेगा, बहुत सारी बातें योजना है, मेरे तो दिमाग में भी नहीं आ रही है कि इतनी तारीख तक नहीं कराया नहीं तो इनको फाइन लगेगा, ये लगेगा।
लेकिन
इनका फायदा क्या मिल रहा है अभी तक आधार कार्ड से और धन जन योजना का जो अकाउंट खोला, इन चीजों से फायदा क्या मिला है अभी तक, ये बताइए।
अगर फायदे की बात करें मनोहर लाल जी, जब से 9 साल हो चुके इस सरकार ने, देश की सरकार ने भी, हरियाणा की सरकार ने भी, बीजेपी की, 9 साल में कुछ फायदा अभी तक हमने तो कुछ दिखाई नहीं दिया कि ये आम आदमी को ये फायदा हुआ है। बल्कि उल्टे अगर हरियाणा की बात करें, फैमिली आईडी के नाम से लोगों को बीपीएल कार्ड से भी बाहर कर दिया गया, कुछ अनाज कुछ थोड़ा बहुत खाने दाने का कुछ जो मिलता था उससे भी बाहर कर दिया गया फैमिली आईडी के नाम से।
बिल्कुल सही।
अभी हालत ये है कि अगर हम बात करें तो एडमिशन स्कूल, सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाना है तो फैमिली आईडी, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाना तो फैमिली आईडी। लगभग जो ये प्रवासी मजदूर हैं जो यूपी से बिहार से आए हुए हैं, इनकी लाखों में संख्या है, ये तो नहीं है लाखों में, बहादुरगढ़ में भी, हरियाणा में भी लाखों में संख्या है।
बहादुरगढ़ तमाम सर, मेरा मानना है कि बहादुरगढ़ में तो मेरा ख्याल सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया बहुत बड़ा है चप्पल जूते का, तो यहाँ तो प्रवासी मजदूर बहुत ज्यादा है। इसके
प्रवासी ये लगभग ये प्रवासी मजदूरी ये सरकारी योजनाओं से फैमिली आईडी के नाम से बाहर कर दिए गए, और यही आने वाले टाइम में ये बाकी मजदूर भी बाहर हो जाएं, क्योंकि फैमिली आईडी में त्रुटियां होंगी, सरकार अपने स्तर पे त्रुटियां करती है, किसी की इनकम 9 लाख रुपए चढ़ा रखी है, किसी कुछ बना रखी है, इसलिए बीपीएल कार्ड से ही बाहर कर दिए, और ये सामाजिक सुरक्षा की जितनी भी गारंटियां थी फैमिली आईडी से जोड़ के लगभग बंद करने की योजना सरकार की है। कुछ लेने हमारे सरकार के द्वार पे कोई लेने ना आएगा।
अच्छा मुकेश जी, एक चीज और बताइए कि जैसे जनधन योजना का वो अकाउंट खोला गया था, खाता खोला गया था, वो जब सरकार ने ये आदेश दिए थे कि इसमें सरकार पैसा डालेगी, बिना जीरो बैलेंस का चलता रहेगा, लेकिन जिन्होंने कुछ लेन देन नहीं किया, जिसके पास है ही नहीं, खाने कमाने से बचता नहीं, उनके तो खाते बंद कर दिए सरकार ने।
यही है, सरकार ने मतलब सपने कुछ और दिखाए हैं, हकीकत कुछ और है। जनधन खाते खुलवा लिए, लगभग लोगों ने खुलवाए भी अपने स्तर पे, 500-700 रुपए उसमें डाले भी होंगे इधर उधर से करके, लेकिन मिलना इस उम्मीद में लोगों ने खाते खुलवाए थे कि हमारे को कुछ मिलेगा, लेकिन मिला कुछ नहीं। अब वो खाते निष्क्रिय हैं तो निष्क्रिय हैं, तो बैंक उनको बंद कर रहे हैं।
अच्छा मुकेश जी, थोड़ा आज के बारे में थोड़ा विस्तार से थोड़ा सा बताइए हमको कि आज आपने क्या क्या बातें सोच के और किस विषय पे मतलब ये धरना प्रदर्शन किया है जो बस अड्डे पे किया है।
हमारा मांग ये है सर मनोहर लाल जी, हम समझते हैं कि जो गांव में मनरेगा लागू हुआ है
जी,
तो बेशक किसी भी सरकार ने किया वो अलग बात है
जी,
लेकिन ये जो सरकार है अगर 100 दिन का ईमानदारी से अगर काम मिल जाएगा किसी भी मजदूर को, बिहार के मजदूर को 100 दिन का काम बिहार में मिल जाएगा
जी,
तो निश्चित तौर पे वो हरियाणा में हजारों किलोमीटर दूर काम करने नहीं आएगा। तो ये हमारी मांग तो ये है,
100 दिन जो आप कह रहे हैं कि साल के 100 दिन होने चाहिए, कितने दिन में 100 दिन होने चाहिए?
साल के 100 दिन का काम की गारंटी मनरेगा कानून करता है,
और जबकि साल में तो 365 दिन होते हैं।
हाँ 365 दिन होते हैं, लेकिन बाकी दिन ये ईमानदारी से तो 100 दिन का भी नहीं मिल रहा। अगर पूरे देश की औसत निकालेंगे तो ये 12 दिन, 13 दिन, 9 दिन ये औसत आता है, तो 9 दिन जिसको काम मिला है तो क्या खाएगा क्या कमाएगा।
यही मेरा मतलब था कि हमारे श्रोता जाने कि मतलब अगर साल में 100 दिन भी काम नहीं मिल रहा तो वो क्या खाएगा, क्या जमा करेगा, क्या दवा दारू करेगा, क्या करेगा वो।
जी 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 बिल्कुल, हमारे मतलब एकदम से बाजार के हवाले देश की जनता को छोड़ना चाहती है ये सरकार, जो सामाजिक सुरक्षा की जितनी भी गारंटी है उनको बंद करना चाहती है, चाहे मनरेगा है, ESIPF है या और कुछ भी है, चाहे बुढ़ापा पेंशन, ये सारी योजनाएं बीपीएल कार्ड पे मिलने वाला